नमस्ते। आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही दिलचस्प प्रणाली पर बात करने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें सुनने वाले ने एक विज्ञान अध्याय साझा किया है, तो हम उसी के जरिए इसे थोड़ा और गहराई से समझेंगे।
बिल्कुल, और ये अध्याय जैसा कि बताया गया कक्षा 5 के स्तर का है, तो ये हमें आप कह सकते हैं बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है।
हाँ, और हमारा मकसद है कि इस अध्याय के जो मुख्य हिस्से हैं
जी
जैसे दिल, खून और नसें यानी रक्तवाहिका हैं,
जी
उन्हें ठीक से समझें, और ये भी कि हम अपने दिल को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं, जो इस सामग्री में बताया गया है। तो चलिए शुरू करें।
जरूर, देखिए इसे समझने का एक अच्छा तरीका है, जैसा अध्याय में भी इशारा है, कि ये हमारे शरीर का एक नॉन स्टॉप डिलीवरी सिस्टम है।
डिलीवरी सिस्टम? अच्छा।
हाँ, एक ट्रक की तरह सोचिए, जो जरूरी सामान मतलब ऑक्सीजन, पोषक तत्व, वो हर कोशिका तक पहुंचाता है, और वहां से जो कचरा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो उठाकर वापस लाता है। और कमाल ये है कि ये सिस्टम कभी रुकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता।
वाह, ये तो कमाल है। तो इस कमाल की डिलीवरी सिस्टम के मतलब मुख्य खिलाड़ी कौन कौन हैं? अध्याय के हिसाब से तीन मुख्य भाग हैं, हैं?
हाँ बिल्कुल, तीन मुख्य स्तंभ हैं। पहला तो हो गया दिल, हमारा हार्ट, जो कि वो शक्तिशाली पंप है। दूसरा है रक्त यानी ब्लड, वो तरल पदार्थ जो ये सब सामान लेकर घूमता है।
ठीक है।
और तीसरा रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, मतलब वो सारी पाइपलाइन या रास्ते जिनमें ये खून बहता है।
चलिए, तो सबसे पहले इस सिस्टम के इंजन यानी दिल पर ही आते हैं। अध्याय कहता है कि ये एक मांसल अंग है, साइज में लगभग हमारी बंद मुट्ठी जितना बड़ा, और हमारी छाती में पसलियों के पिंजरे के पीछे एकदम सुरक्षित।
सही कहा, और ये एक खास तरह की मांसपेशियों से बना है, कार्डियक मसल्स। इनकी खासियत है कि ये कभी थकती नहीं है। और एक दिलचस्प बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, इसका जो निचला हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है।
अच्छा।
हाँ, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि दिल पूरा का पूरा बाईं तरफ है, जबकि असल में वो ज्यादातर छाती के बीच में ही होता है, फेफड़ों के बीच में।
अच्छा, ये तो नई बात पता चली। और इसके अंदर क्या होता है? मुझे याद है अध्याय में चार खाने या चेम्बर्स का जिक्र था।
हाँ बिल्कुल, दिल के अंदर आप समझ लीजिए चार कमरे होते हैं। ऊपर वाले जो दो छोटे कमरे हैं उन्हें कहते हैं अलिंद, एट्रिया या ऑरिकल्स,
अलिंद। ओके।
और नीचे वाले जो दो बड़े और ज्यादा मजबूत कमरे हैं उन्हें कहते हैं निलय यानी वेंट्रिकल्स।
और ये कमरे आपस में मिले हुए तो नहीं होते? अध्याय में किसी दीवार जैसी चीज का जिक्र था।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, दिल का जो बायां हिस्सा है और दायां हिस्सा है वो एक मजबूत दीवार से पूरी तरह अलग होते हैं, उसे सेप्टम कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये पक्का करता है कि ऑक्सीजन वाला यानी साफ खून
जो शरीर में जाना है।
हाँ बिल्कुल, और बिना ऑक्सीजन वाला खून जो फेफड़ों में साफ होने जा रहा है वो आपस में मिल ना जाए। ये बंटवारा ही हमारे सिस्टम को इतना कुशल बनाता है।
तो ये पंप मतलब दिल खून को घुमाता कैसे है? ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल सी लगती है।
हाँ, पर इसे आसान करके समझते हैं। देखिए, शरीर से इस्तेमाल होने के बाद जो खून वापस आता है उसमें ऑक्सीजन कम होती है। समझने के लिए अक्सर उसे नीले रंग से दिखाते हैं, है ना? तो ये खून पहले दिल के दाहिने हिस्से में आता है।
ठीक है, दाहिने हिस्से में। फिर
दिल का दाहिना हिस्सा सिकुड़ता है और इस खून को धक्का देकर फेफड़ों में भेज देता है।
फेफड़ों में?
क्यों? ताकि वो साफ हो सके। फेफड़ों में जाकर ये खून अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और ताजी ऑक्सीजन भर लेता है।
जैसे हम सांस लेते हैं ना?
बस वही।
अच्छा, और फिर ये ताजा ऑक्सीजन वाला खून जिसे अक्सर लाल रंग से दिखाते हैं।
बिल्कुल, वो चमकीला लाल खून वापस दिल के बाएं हिस्से में आता है, और अब दिल का जो बायां हिस्सा है जो ज्यादा मजबूत होता है वो जोर से सिकुड़ता है, और इस ताजे खून को एक बड़ी धमनी जिसे महाधमनी या एओर्टा कहते हैं, उसके जरिए पूरे शरीर में पहुंचा देता है, हर अंग तक, हर कोशिका तक, और ये चक्कर चलता ही रहता है।
और ये जो हम धक धक सुनते हैं दिल की धड़कन, वो क्या है?
वो दरअसल दिल के इन्हीं चेम्बर्स का मतलब अलिंद और निलय का एक लय में सिकुड़ना और फैलना है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। एक बार पूरा सिकुड़ना और फैलना मिलकर एक धड़कन बनती है। और अध्याय में ये भी बताया है कि जो लबडब जैसी आवाज डॉक्टर सुनते हैं स्टेथोस्कोप से,
हाँ हाँ
वो दिल के अंदर मौजूद वॉल्व के खुलने और बंद होने की आवाज है।
वॉल्व ये क्या करते हैं?
ये वाल्व आप समझ लीजिए दरवाजों की तरह हैं, छोटे छोटे गेट। ये पक्का करते हैं कि खून हमेशा सही दिशा में बहे, आगे की तरफ, पीछे न लौट जाए।
और इसी धड़कन को हम अपनी कलाई पर या गर्दन के साइड में महसूस कर सकते हैं, उसे ही नाड़ी या पल्स कहते हैं।
अध्याय में लिखा है कि नॉर्मली एक स्वस्थ इंसान का दिल एक मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है,
लेकिन जब हम खेलते या दौड़ते हैं तो ये बढ़ जाती है 100 से भी ज्यादा।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की मांसपेशियों को ज्यादा काम करना पड़ता है ना, तो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए दिल ज्यादा तेजी से खून पंप करने लगता है ताकि वो जरूरत पूरी हो सके। शरीर खुद को एडजस्ट करता है।
इस अध्याय में कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं, जैसे हमारा दिल दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है। सोचकर ही अजीब लगता है, कितनी मेहनत
है ना, सच में अविश्वसनीय है। और डॉक्टर इसी धड़कन की आवाज को सुनने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। इससे उन्हें दिल की सेहत का अंदाजा लगता है।
इसलिए दिल का आकार वैसा नहीं होता बल्कि हमारी बंद मुट्ठी जैसा होता है।
हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। वो शेप शायद प्यार के सिंबल के तौर पे ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और अध्याय में एक छोटी कहानी भी है, द लिटिल रेड पंप, इसी बात को अच्छे से समझाती है कि दिल एक छोटे पर कभी ना रुकने वाले पंप की तरह है जो सोते जागते हर पल हमारे लिए काम करता रहता है।
ठीक है, तो दिल की बात काफी हद तक समझ आ गई। अब उस तरल पदार्थ पर आते हैं जिसे ये पंप करता है, यानी रक्त या खून। इसके भी कई हिस्से होते हैं ना?
हाँ, खून सिर्फ लाल रंग का पानी नहीं है, ये कई सारी अलग अलग चीजों का एक मिश्रण है और हर हिस्से का अपना खास बहुत जरूरी काम है। मुख्य तौर पर देखें तो 4 भाग हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBCs, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs और प्लेटलेट्स।
अच्छा, तो ये सब क्या क्या करते हैं, एक एक करके बताएं जरा।
जरूर, सबसे पहले है प्लाज्मा। ये खून का तरल हिस्सा है, मतलब लिक्विड पार्ट, हल्का पीला सा होता है। खून का आधे से ज्यादा हिस्सा यही प्लाज्मा होता है और इसी में बाकी सारी कोशिकाएं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, वो सब तैरती रहती हैं। इसका काम है पचा हुआ भोजन, पानी, मिनरल्स और हाँ, शरीर में बनने वाले बेकार पदार्थ, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना।
ओके, और लाल रक्त कोशिकाएं जिनकी वजह से खून लाल दिखता है?
बिल्कुल, लाल रक्त कोशिकाएं RBCs, ये डिस्क जैसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना। इनमें खास प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन, वही ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसी की वजह से खून का रंग लाल होता है। और हाँ, यही कोशिकाएं वापस आते समय कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक लाती हैं ताकि वो बाहर निकल सकें।
तो ये हुई हमारी ऑक्सीजन डिलीवरी वाली गाड़ियाँ। और श्वेत रक्त कोशिकाएं WBCs?
श्वेत रक्त कोशिकाएं WBCs, ये हैं हमारे शरीर के सैनिक, बॉडीगार्ड्स। अध्याय में बताया गया है कि ये हमें बीमार करने वाले कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से लड़ती हैं। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है इनकी संख्या बढ़ जाती है लड़ने के लिए।
सैनिक कोशिकाएं, ये तो दिलचस्प है। और वो चौथा हिस्सा?
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये बहुत ही छोटी होती हैं, कोशिकाओं के टुकड़ों जैसी। इनका काम तब नजर आता है जब हमें कहीं चोट लगती है और खून बहने लगता है।
हाँ, तब क्या होता है?
ये प्लेटलेट्स फौरन उस चोट वाली जगह पर जमा हो जाती हैं, वहां एक तरह का जाल सा बनाती हैं और खून को गाढ़ा करके जमा देती हैं। इसी को खून का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इससे खून का बहना रुक जाता है।
अच्छा, तो जब चोट पर वो पपड़ी या खुरंड जम जाती है, वो असल में इन्हीं प्लेटलेट्स का काम होता है?
हाँ बिल्कुल, वो जमी हुई प्लेटलेट्स, खून के कुछ और हिस्से और फाइब्रिन का जाल होता है। वो घावों को बाहर के इन्फेक्शन से बचाता है और नीचे त्वचा को ठीक होने का मौका देता है। तो देखा आपने खून के हर हिस्से का कितना महत्वपूर्ण, कितना स्पेशलाइज्ड काम है। सब मिलकर टीम की तरह काम करते हैं।
बिल्कुल, ये तो हुई खून की बात। अब ये खून शरीर में घूमता कैसे है? आपने कहा था नलिकाओं का जाल होता है।
हाँ, खून ऐसे ही खुला नहीं घूमता, वो बंद नलिकाओं के एक बहुत बड़े फैले हुए नेटवर्क में बहता है। इन्हीं नलिकाओं को रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स कहते हैं, और ये मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं, धमनियां, आर्टरीज, शिराएं, वेन्स और केशिकाएं, कैपिलरीज।
धमनियां, शिराएं और केशिकाएं, इनमें क्या फर्क है?
देखिए, धमनियां आर्टरीज वो मोटी और मजबूत दीवार वाली नलिकाएं हैं जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं, पूरे शरीर में।
अच्छा, दिल से दूर।
हाँ, क्योंकि दिल इनमें काफी तेज दबाव से खून फेंकता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं ताकि वो प्रेशर झेल सकें। सबसे बड़ी धमनी जो दिल से निकलती है वो है महाधमनी या एओर्टा। अध्याय में कुछ और नाम भी हैं, जैसे पल्मोनरी धमनी जो खून फेफड़ों तक ले जाती है, और कैरोटिड धमनी जो दिमाग तक खून पहुंचाती है। छोटी धमनियों को आर्टीरियोल्स कहते हैं।
ठीक है, और शिराएं, वेन्स, ये फिर उल्टा काम करती होंगी।
बिल्कुल सही, शिराएं खून को शरीर के अलग अलग अंगों और ऊतकों से वापस इकट्ठा करके दिल तक लाती हैं।
वापस दिल तक?
हाँ, इनमें खून का दबाव धमनियों के मुकाबले काफी कम होता है, इसलिए इनकी दीवारें थोड़ी पतली होती हैं। इनमें खास चीज होती है, अंदर की तरफ वॉल्व लगे होते हैं, छोटे छोटे फाटक। ये वॉल्व खून को सिर्फ दिल की तरफ जाने देते हैं, उसे वापस नीचे की तरफ बहने से रोकते हैं। खासकर पैरों से ऊपर आते हुए खून के लिए ये बहुत जरूरी है, ग्रेविटी के खिलाफ। सबसे बड़ी शिरा है विनय कावा, जिसके दो भाग होते हैं, एक शरीर के ऊपरी हिस्से से खून लाता है, दूसरा निचले हिस्से से, और छोटी शिराओं को वेन्यूल्स कहते हैं।
अच्छा, तो धमनियां खून ले गईं, शिराएं वापस ले आईं, और वो तीसरी वाली केशिकाएं, कैपिलरीज, वो क्या है?
केशिकाएं, कैपिलरीज,
या
ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, और ये बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं, हमारे बाल से भी कहीं ज्यादा महीन। ये इतनी पतली नलिकाओं का जाल होती हैं कि शरीर की लगभग हर कोशिका तक पहुंच जाती हैं। ये छोटी धमनियों को छोटी शिराओं से जोड़ती हैं। इनकी दीवारें सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी होती हैं।
सिर्फ एक कोशिका मोटी? बाप रे।
हाँ, और इसी वजह से यहीं पर खून और कोशिकाओं के बीच जरूरी चीजों का असली लेन देन होता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व खून से निकलकर कोशिकाओं में जाते हैं, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे बेकार पदार्थ निकलकर खून में आते हैं। असल डिलीवरी पॉइंट यही है।
वाह, मतलब ये तो बहुत ही बारीकी से बुना हुआ नेटवर्क है पूरे शरीर में। अध्याय में खून और इन वाहिकाओं से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स भी थे शायद।
हाँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि एक औसत वयस्क इंसान के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है।
5 लीटर? अच्छा।
और ये खून हमारे शरीर के अंदर ही अंदर इन नसों में घूमते हुए रोजाना लगभग 96,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है।
96,000 किलोमीटर रोज? ये तो मतलब पृथ्वी के 2 चक्कर से भी ज्यादा।
हाँ, इससे अंदाजा लगता है कि ये सिस्टम कितनी तेजी से और बिना रुके काम करता है।
अविश्वसनीय।
बिल्कुल। और एक और आम सवाल जो लोगों के मन में आता है, और अध्याय में भी इसे क्लियर किया गया है, कि हमारी त्वचा के नीचे जो नसें मतलब शिराएं नीली दिखती हैं, क्या उनमें खून नीला होता है?
हाँ, ये सवाल तो आता है दिमाग में।
तो जवाब है नहीं, खून हमेशा लाल ही होता है। जब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो वो चमकीला लाल होता है, जब ऑक्सीजन कम होती है तो वो गहरा लाल हो जाता है, थोड़ा मरून जैसा। नसों का नीला दिखना असल में हमारी त्वचा की परतें और रोशनी कैसे उससे टकराकर वापस आती है उसका असर है। खून नीला नहीं होता।
अच्छा, तो ये भी एक भ्रम था जो आज दूर हो गया। ठीक है, अब जब हमने दिल, खून और इन नसों के बारे में इतनी सारी बातें जान ली हैं इस अध्याय के हिसाब से, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये जो हमारा दिल है, जो इतनी मेहनत करता है, इसे स्वस्थ कैसे रखें? इस पर भी तो जोर दिया गया है अध्याय में।
हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल हमारे शरीर का इतना क्रिटिकल, इतना महत्वपूर्ण अंग है, तो उसकी देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और अच्छी बात यह है, जैसा अध्याय बताता है, कि इसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करने, बस कुछ सरल रोजमर्रा की आदतें अपनानी है।
अच्छा, जैसे कि क्या आदतें?
सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी है नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। रोज कम से कम 30 मिनट कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो, जैसे तेज चलना, जॉगिंग करना, दौड़ना, रस्सी कूदना, नाचना, साइकिल चलाना, या कोई खेल खेलना। अध्याय कहता है कि इससे दिल की मांसपेशी मजबूत होती है, जैसे बाकी मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं।
यानी दिल की भी अपनी कसरत होती है। ठीक है, और खाने पीने के बारे में क्या?
स्वस्थ भोजन, हेल्दी ईटिंग, ये भी उतना ही जरूरी है। मतलब एक संतुलित नाश्ता करना, दिन भर में खूब सारे फल और सब्जियां खाना, अपनी डाइट में साबुत अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, ओट्स, इनको शामिल करना। अध्याय में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का भी जिक्र है, जो मछली, अलसी, अखरोट वगैरह में मिलते हैं, और ये दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं।
और किन चीजों से बचना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए?
बचना चाहिए अस्वस्थ कर वसा से, खासकर सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ये अक्सर जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्राइज और तले हुए खाने, समोसे, पकोड़े और बेकरी आइटम्स जैसे केक, पेस्ट्री, कुकीज, इनमें ज्यादा होते हैं। अध्याय सलाह देता है कि पैकेट वाला खाना खरीदने से पहले उसका लेबल पढ़ना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि फैट कितना है, कौन सा है। साथ ही नमक यानी सोडियम, उसका इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं होता।
आजकल बच्चे हों या बड़े, स्क्रीन के सामने बहुत समय बिताते हैं, बैठे रहते हैं घंटों। इसका भी कोई असर पड़ता है?
हाँ बिल्कुल, अध्याय इस पर भी ध्यान दिलाता है। ज्यादा देर तक लगातार बैठे रहना दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे कहते हैं। अगर काम या पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हर घंटे में उठकर थोड़ा चल फिर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। टीवी देखते हुए या कंप्यूटर पर काम करते समय भी बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, और जहां मुमकिन हो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीजें हैं पर फर्क पड़ता है।
और पीने के लिए पानी वगैरह?
पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है, शरीर को हाइड्रेटेड रखना। और कोशिश करनी चाहिए कि मीठे शरबत, कोल्ड ड्रिंक या पैकेट वाले फ्रूट जूस की जगह सादा पानी पिएं, वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा अध्याय के कंपेयर एंड लर्न सेक्शन से ये भी संकेत मिलता है कि तनाव को मैनेज करना, मतलब ज्यादा स्ट्रेस ना लेना, और पूरी नींद लेना, ये भी दिल की सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना और व्यायाम।
अध्याय में लिखा है कि जैसे एथलीट रोज कसरत करके अपने दिल को ज्यादा मजबूत और कुशल बना लेते हैं, वैसे ही हम सब भी नियमित व्यायाम से अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। और ये भी कि फल, सब्जियां खून को साफ रखने में मदद करते हैं।
बिल्कुल, ये सही पॉइंट्स हैं। और एक बहुत जरूरी सीख जो ये अध्याय देता है वो ये कि ये सोचना गलत है कि दिल का ख्याल सिर्फ बुजुर्गों या बड़ी उम्र के लोगों को रखना चाहिए। बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी है। अच्छी आदतें बचपन से ही डालनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर भी बनी रहें।
हाँ, उसमें वो हेल्दी हार्ट हीरोज वाली कहानी भी तो है। एक बच्ची है माया, जो पहले जंक फूड खाती थी, वीडियो गेम खेलती रहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी आदतें बदली, स्कूल पैदल जाने लगी, बाहर खेलने लगी, फल खाने लगी, समय पर सोने लगी, और वो एक हेल्दी हार्ट हीरो बन गई। ये कहानी यही बताती है कि छोटी उम्र से ही शुरुआत करना कितना जरूरी है और मुमकिन भी है।
हाँ, वो कहानी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण है कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं हमारी सेहत में।
तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को इस अध्याय के आधार पर समेटें, तो हमने परिसंचरण तंत्र के तीन मुख्य हिस्सों, दिल, रक्त और रक्त वाहिकाओं के बारे में जाना। हमने देखा कि दिल कैसे एक कमाल के पंप की तरह काम करता है, खून के अलग अलग हिस्से क्या क्या शानदार काम करते हैं, और कैसे इन नसों का जाल पूरे शरीर तक जीवन पहुंचाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला, मतलब टेक अवे क्या है?
निचोड़ यह है कि ये प्रणाली, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जिंदा रहने के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। हर छोटा बड़ा हिस्सा, दिल की एक धड़कन से लेकर खून की एक छोटी सी कोशिका तक, अपना काम पूरी सटीकता और तालमेल से करता है, ताकि शरीर की हर कोशिका को वो सब मिल सके जिसकी उसे जरूरत है, ऑक्सीजन, पोषण और वहां से बेकार चीजें हटाई जा सकें। ये एक बेहतरीन टीम वर्क है जो लगातार चलता रहता है। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि अध्याय बार बार जोर देता है, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सरल सेहतमंद आदतें अपनाकर अपने इस अनमोल सिस्टम का और खासकर अपने दिल का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं।
जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो अध्याय के थिंक एंड प्रिडिक्ट सेक्शन से प्रेरित है। जरा सोचिए, अगर कभी चोट लगने पर हमारा खून जमे ही नहीं, जैसा कि प्लेटलेट्स की वजह से जमता है, तो क्या होगा? या अगर हमारा दिल, वो छोटा सा पंप, अचानक काम करना बंद कर दे, तो शरीर के बाकी हिस्सों पर कितनी तेजी से असर पड़ेगा?
ये सवाल वाकई हमें इस पूरी प्रणाली के हर एक हिस्से की अहमियत का एहसास कराते हैं। ये दिखाते हैं कि ये सब कुछ कितने नाजुक ढंग से संतुलित है, और इसका ठीक से काम करते रहना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल, तो इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है परिसंचरण तंत्र के बारे में इस अध्याय से मिली ये जानकारी आपको उपयोगी और दिलचस्प लगी होगी।